हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचनी गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विशोभानुसुते देवी प्रणामामि हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तिवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो जो सारंग मुरारी है और सारंग ठाकुर, इनके बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं है, एक ही लीला केवल उनके जो फेमस है यही लिखे लिपिबद्ध किए हैं। और काल जो काल था, जो एकादश द्वादशी के दिन नरहरि सरकार जी का तिरुभाव तिथि है, तो नरहरि उनके संबंध में मैं कुछ बताऊंगा। तो नरहरि मुकुंद दो भाई थे, खंडेर मुकुंददास श्री रघुनंदन श्री नरहरि, यही मुख्य तीन जन। कृष्णदास कविराज गोस्वामी 15 अध्याय में बताते हैं, मुकुंद की महिमा बताते भी बताते हैं। खंड में मुकुंददास है, श्री रघुनंदन और नरहरि। मुकुंद और मुकुंद और नरहरि दो भाई है और मुकुंद के पुत्र हैं रघुनंदन ठाकुर। तो काटोआ से 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर श्रीखंड नाम अपि मुकुंद, उनके पिताजी नारायण जी वहां पर रहते थे। वो बैद्य परिवार से थे, जो डॉक्टर होते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर, बैद्य परिवार से थे। और उनके पिताजी भी बहुत पंडित थे और दोनों भाई को शिक्षा दिए। और मुकुंद ने अपने वंश परंपरा के अनुसार उन्होंने आयुर्वेदिक डॉक्टर बने, बड़े कविराज हुआ। और नरहरि व्याकरण आदि ये सब अलंकार सब चीज पढ़ाई किए। तो उनके घर पहले से जो गोपीनाथ है, वो गोपीनाथ की सेवा पहले उनके पिताजी से भी पहले उनके वंश परंपरा के ठाकुर जी थे गोपीनाथ जी, उनकी सेवा करते थे। तो जब उसी समय में मुकुंद जब डॉक्टर बन गए तो उनके पिताजी का देहांत हो गया और सारे घर की जो देखभाल करना, ठाकुर जी की सेवा चलाना, सब कुछ मुकुंद के ऊपर आए। और नरहरि से 7-8 साल के बड़े थे मुकुंद जी और बहुत फेमस डॉक्टर हो गया। इसलिए उनको जो सरकार थे मुस्लिम सरकार, उन्होंने ले गया गौर नगर राम किले के पास में। और मुकुंद जी जाने से पहले ठाकुर जी का सेवा की व्यवस्था, और नरहरि जी को नवद्वीप में, तब नवद्वीप पढ़ाई के लिए बहुत टोल, शिक्षा के लिए बहुत उत्तम स्थान था, वहां पे भेज दिया। तो नरहरि सरकार बचपन से कवि थे, राधा कृष्ण की लीला में महापुरुष से मिलने से पहले राधा कृष्ण के बारे में बहुत सारे पद उन्हें लिखे। तो ऐसे लिखते थे, राधा कृष्ण के बारे में बहुत सारे पद उन्हें लिखा। इसके बाद फिर भी उन्होंने मन में संतुष्ट नहीं था, पढ़ाई करते करते उन्होंने गंगा तट जाते थे और कुछ लिखते थे। तब एक दिन उन्होंने सपनों देखा चैतन्य महापुरुष के बारे में, इस दिव्य पुरुष का सपने में देखा तो ढूंढने लगा। एक दिन नवद्वीप गंगा तट पे बैठे थे, वहां पे महापुरुष से दर्शन हुआ। दर्शन महापुरुष के चरण कमल गिर पड़े और मूर्छित हो गया। महापुरुष ने उठाया, उनका आलिंगन दिए और तब से महापुरुष के साथ उनके कीर्तन में कथा में उनके पास संगति करते थे नरहरि सरकार जी। और तब से उन्होंने महापुरुष के बारे में लिखे, उन्होंने एक भजन लिखा, स्वयने गौर स्वपने गौर गौर नयने तारा। तो उनकी एक भजन है, माने मेरे सोते हुए गौरंग, चलते हुए फिरते खाते जो भी है, हमेशा उसमें जो भी कार्यकाल उसमें गौरंग गौरंग लिखे हैं। ये बहुत सारे भजन और उनके उन्होंने ऐसे लिखे हैं। और ब्रज में मधुमती गोपी के नाम से प्रसिद्ध थे। तो उनका मन जब महाप्रभु से मिला और जो परमानंद आस्वादन कर रहे थे, उनका मन में खेद हुआ कि मेरा बड़ा भाई भी आ जाता तो वो भी इस रस को आस्वादन कर सकते थे। तो मुकुंद के घटनाक्रम में एक बार वो राजा जो बादशाह के बारे में उनके तबीयत के बारे में पूछ रहे थे, बहुत ऊंचा स्थान में बैठ के, सुबह सुबह का समय था, बाहर नगर से बाहर जाके, और उसी समय सूर्य उदय हो गया, वो धूप गिरा राजा के सीस में, तो एक मोर पुष्प के से बड़े पंखा जैसे बना के उसके सिर पीछे दिया। तो मुकुंद से देखकर, मोर पंख देखकर कृष्ण स्मृति आ गया और वह से मूर्छित होकर गिर पड़ा। मूर्छित होकर गिर पड़ा तो राजा तुरंत उतर के उनको स्वस्थ कराया और पूछा अब क्या हो गया था। तो राजा ने बताया कि मेरा मिर्गी बीमारी है इसलिए मैं गिर पड़ा। तो यहां पर कृष्णदास कवि बताते हैं महाविदग्ध राजा, वो भी बड़े पंडित थे, वो समझ गया ये अपने छिपा रहे अपने बातों को, क्योंकि भक्ति की जो बात है इसको हर जगह प्रकाश नहीं करना चाहिए कि मैं ऐसे हूं, मैं इतना आगे पहुंचा हूं, ये भक्त कभी नहीं करते हैं, भक्ति इसको छिपाते हैं। और अनधिकारी है जो भक्ति के बारे में जानते नहीं है, उसके बारे में आप कोई यदि बोल भी देगा, मान लीजिए भक्त नहीं उसको बोल देगा तो उपहास करेगा, तो इससे उसका अपराध भी बनेगा। तो इसलिए भक्ति आपने जो गौर कृष्णदास बाबा जी बताते हैं कि वो भक्ति है, वो स्त्री रूपनी स्वती स्त्री है, उनको छुपा के रखना है, वो कृष्ण को ठाकुर जी को केवल पता है वो कैसे भजन कर रहे हैं, दिखाने के लिए भक्ति नहीं होते हैं। स्वती स्त्री और वैश्या जो है ये पूरा विपरीत है, वो दिखाते कौन है ऐसे है, फर्स्ट उड है। तो स्वती स्त्री जैसे भक्ति, वो भगवान के साथ जैसे संबंध, और स्वती स्त्री जैसे अपने पति के साथ ही संबंध है, वही जानते हैं उनको, इसलिए भक्ति जो है छुपा के रखना है। तो उन्होंने उनको बताया नहीं। इसके बाद उन्होंने राजा से बताया कि मैं अभी, मेरा स्थिति अच्छा नहीं है, मैं अभी नौकरी नहीं करूंगा। राजवैद्य थे वो, नौकरी छोड़ के, तो उनका नरहरि विश्वास थे, वो आ जाए, और मुकुंद को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने आके पहले गांव जाने से पहले नवद्वीप में उनके भाई से मिलने के लिए आ गया। नवद्वीप में तब आने से दोनों भाई मिले और नरहरि बहुत खुश हो गया और जाके महाप्रभु से मिलाया और महाप्रभु के साथ दोनों रहे। तो इस समय वो दोनों भाई विचार किया था कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं आकुमार ब्रह्मचारी रहूंगा, लेकिन महाप्रभु कालक्रम में महाप्रभु ने मुकुंद को आदेश दिया कि आपको शादी करना है और नरहरि को बता कि आप शादी नहीं करना है। दोनों तो विचार किए थे, महाप्रभु के आदेश बोले ये नरहरि शादी नहीं करेगा। तो इसके बाद उनको श्रीखंड में जाने के लिए बोला और उनका शादी हो गया मुकुंद जी को, और ठाकुर जी का सेवा भी करते रहे। और बताया था कि नरहरि बीच में जाएगा आपको सहायता के लिए, आपके बच्चे होगा, जो पहले महाप्रभु बता दिया रघुनंदन, वो मेरा कंदर्प कामदेव के अवतार होगा, तो उनके शिक्षा के लिए भी नरहरि बीच में जाते रहेगा प्रचार कार्य के लिए। इसी प्रकार नरहरि सरकार कभी कभी नवद्वीप रहते थे, कभी श्रीखंड में आके प्रचार आदि करते थे। इसी प्रकार महाप्रभु जब सन्यास लेके चले गए तो वो आके श्रीखंड में रहने लगे, उधर प्रचार कार्य करने लगे, और राधा कृष्ण के बारे में जैसे महाप्रभु के सहस्त्र नाम भी उन्होंने लिखा है संस्कृत में, हरि शंकर जी। तीसरी प्रकार उन्होंने बाद में शिष्य बनाए, उनका एक शिष्य था, दो शिष्य कंसारी और दैत्यारी दास। उनके सपने में आदेश आया, एक बार विश्व ठाकुर जी आके बताया कि आपके जो नीम वृक्ष है इससे चैतन्य महाप्रभु के दो विग्रह बना के, तीन विग्रह बना के आप गुरुजी को समर्पण करो। सुबह सुबह एक कारपेंटर आ गया, वो ढूंढने लगे गांव से बाहर जाके, तो एक कारपेंटर बुड्ढा कारपेंटर ने घूम रहा था, तो उनको बुला के लाए, तो उन्होंने बताया ऐसे महाप्रभु के विग्रह बना ले, स्वयं विश्वकर्मा ही थे, विश्वकर्मा के वो तीन विग्रह बनाए। तो एक विग्रह उनके छोटे विग्रह जो है वो अपने पास में रखे, और जो सबसे बड़े विग्रह थे वो काटवा महाप्रभु के सन्यास मंदिर जहां पे है, जो विग्रह आप दर्शन करेंगे अभी भी जाके दर्शन कर सकते हैं, वो विग्रह बड़े विग्रह काटवा में है। और जो बीज वाला एक विग्रह था वो कुलाई ग्राम में ले गया। इसी प्रकार नरहरि सरकार प्रचार किए और सब देखभाल किए, बीज बीज में महाप्रभु के पास जाते थे, कीर्तन टली लेके रघुनंदन मुकुंद नरहरि, और ऐसे प्रचार किया। उनके जो शिष्य लोचनदास ठाकुर, उन्होंने चैतन्य मंगल की रचना किए हैं। श्रीनिवास आचार्य जाके मिले तो वैष्णव की अध्यक्षता प्रचार करियो देखते थे हमेशा। एक बार जब उनका तिरुभाव तिथि हो गया, ये जो अग्रहण महीना के कृष्ण द्वादशी को उनका तिरुभाव तिथि है, तो बाद में रघुनंदन जी महोत्सव किया। महोत्सव किए, महोत्सव करने के बाद उनको एक साल के बाद जो महोत्सव है उस दिन नरहरि सरकार जो आसन उनके कुटिया में भोग लगाया, भोले दरवाजा बंद करके जाके बाहर मंत्र जप कर रहे थे। जब दरवाजा खोला वो नरहरि का जो स्वयं आसन था उस आसन पता है वो रख दिया था बैठने के लिए भोजन जो प्रसाद, ये भी देखना है रघुनंदन जी क्या किया। पहले जो बनाए थे ठाकुर जी को भोग लगाया, उनके जो प्राण गौर है नरहरि के प्राण गौर, उनको भोग लगा के प्रसाद को ही समर्पण करना है। इसलिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए, व्यास पूजा हो कोई भी हो उसमें ठाकुर जी के महाप्रसाद ही भोग लगाना चाहिए, प्रसाद को ही। तो ऐसा आचार्य से हम जो सीखना है, रघुनंदन जी ठाकुर जी को भोग लगाया, उस प्रसाद को ही नरहरि सरकार को भोग लगाया। फिर तब जब उन्होंने दरवाजा खोला देखा साक्षात नरहरि उस प्रसाद को पा रहे थे, तो ये भी एक साक्षात प्रमाण है। जो गुरु तत्व है ये भी साक्षात है, इसलिए बताते हैं दीक्षा दान दिल जय जन्म जन्म प्रवेश, ऐसे नहीं कि चला जाने के बाद समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार उन्होंने महोत्सव किए और बाद में भी बहुत महोत्सव, तो इसी प्रकार निहरि सरकार की लीला तो समाप्त होते हैं। तो नवद्वीप जो है नौ द्वीप है, नौ द्वीप में जो है माम मधुद्रम द्वीप है और वह में माम गच्छी। तो एक बार जीव गोस्वामी को लेकर नित्यानंद प्रभु ने परिक्रमा किया, जो परिक्रमा है भक्ति विनोद ठाकुर जो लिखे हैं ये नित्यानंद प्रभु के द्वारा बताई हुई महिमा है, जो महत्व है नवद्वीप धाम के, क्या क्या लीला है कृष्ण लीला के कौन से, तो सारे बात जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने लेके घुमाते थे। तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने जाते जाते जाके मधुद्रम द्वीप जाके पहुंचे, जाके जीव गोस्वामी को बताते हैं और बहुत आनंदित होकर बताते हैं कि पहले पूर्व कल्प में रामचंद्र जब वनवास गए थे एक बट वृक्ष था, उस बट वृक्ष में जाकर दिखा के बोला कि ये बट वृक्ष नीचे इन्होंने कुटिया बना के कुछ दिन रोका था। तब रामलीला उन्होंने जब वहां पे रामचंद्र जी थे तो रामचंद्र जी एक दिन मुस्कुराया, सीता जी ने पूछे जी अच्छा आप क्यों मुस्कुराए, बोला कोई धन्य कलियुग में मैं गौरंग रूप में अवतार लूंगा, गौरंग रूप में, और यह बहुत मधुर लीला करेंगे, विद्या विलास सन्यास लीला और कीर्तन प्रचार। तो सीता जी ने देखने की इच्छा किया, तब उन्हें गौरंग मूर्ति दर्शन हुआ और सीता जी ने पूछा आपने सन्यास करेंगे अपनी गृहिणी छोड़कर माता को छोड़कर, बोला है ये जो साथ में रहना और जो विप्रलम्बा भाव है इसमें भजन करना बहुत ही ज्यादा गार प्रेम उसमें होते हैं, इसलिए मैं और ये भक्ति धर्म जो है प्रेम भक्ति है इसको प्रचार करना है, इसलिए मेरे को सन्यास लेना है। और बताते हैं कि जैसे आप स्वर्गारोहण, आप जब पाताल में प्रवेश कर गए तो मैं जो भी योग आदि किया तो मैं सोने का सीता बनाया था, सोने का सीता बनाया, जो यज्ञ आदि जो भी करना है इसमें भाग लेने के लिए आप तो नहीं थे, तो सोने सीता से ही कार्य संपन्न किया। तो बहुत सारे यज्ञ किया था रामचंद्र बाद में भी, तो हर साल नए नए सोने सीता बनाते थे। इसी प्रकार बताया कि मैं जब चला जाऊंगा सन्यास लेके, आप भी मेरा विग्रह बनाकर उनको उपासना करना। इसलिए जो धामेश्वर महाप्रभु है वो विष्णुप्रिया देवी ने उनको उपासना किए थे विग्रह रूप में, साक्षात महाप्रभु है। इसी प्रकार वहां पे जो रामचंद्र जी के एक मित्र था जो चंडक, उनका नाम बंगाल में गुहक चंडल है, उसका नाम दूसरा कुछ है क्या हिंदी में? उनके जो मित्र था एक, वो रामचंद्र जी का मित्र था, चंडल था का क्या था वो, उसका नाम हिंदी में क्या है? जो जब सन्नास या वनवास जाते समय रामचंद्र जी मिले थे ना भील, ना क्या था? निषादराज। तो निषादराज फिर दोबारा जन्म लिया नवद्वीप में, वो उनका नाम है सुंदरानंद। लेकिन उनका तो उपास्य उपास्य जो है, जैसे मुरारी गुप्त है, महाप्रभु के साथ भी जन्म लिया, लेकिन उनका इष्ट कौन है? रामचंद्र जी है। महाप्रभु बार बार प्रयास किया, बहुत बहुत बताया कि कृष्ण इतना मधुर है, ऐसे है वैसे है, उनका मन भी बदल गया था मुरारी गुप्त, फिर भी बाद में चेंज नहीं कर पाया। तो उन्होंने महाप्रभु के चरण कमल जाकर पकड़ के बताया कि मैं प्रभु, मैं मेरा मृत्यु हो जाए, आपको मैं बता दिया कि मैं छोड़ दूंगा कृष्ण भजन कर, लेकिन मैं रामचंद्र को सोन नहीं सकता हूं, क्योंकि उनके चरण कमल ने मेरा सिर बेच दिया, इसलिए मैं कृष्ण भजन नहीं कर सकता हूं, और आपको वचन दिया भी टूट रहा है, तो इसलिए मेरा मृत्यु हो जाए। तो ठाकुर जी परीक्षा करते हैं भक्त लोग, कितना कितना कड़े परीक्षा देना पड़ता है मृत्यु को बाजी लगाने वाले। तो उन्होंने अपने महाप्रभु के वचन को नहीं रख पाया, तो इसलिए मुरारी गुप्त ने विचार किया कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैं रघुनाथ को नहीं छोड़ सकता हूं, और आपकी वचन, आपको भी वचन दिया हूं महाप्रभु से, ये संकट में पड़ गए। ऐसे संकट 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 की घड़ी उतारना पड़ता है पांडव लोग के जैसे। तो महाप्रभु ने बहुत खुश हो गया, महाप्रभु बोला मैं तो आपका निष्ठा को जानने के लिए मैं आपको इस पर परीक्षा किया, आप क्यों छोड़ेंगे? आप तो साक्षात हनुमान है, आप क्यों रघुनाथ का चरण छोड़ेंगे? इसी प्रकार वो सुंदरानंद है, उनको तो रामचंद्र की जन्म जन्मांतर भक्त नित्य सिद्ध पार्षद है। तो उन्होंने रामचंद्र को दर्शन के अलावा बिल्कुल उनका मन नहीं होता था। तो महाप्रभु के घर एक दिन उन्होंने आए, घूमते घूमते आकर उन्होंने महाप्रभु जी को दर्शन किए, और तभी तो उनका मन नहीं भरता था। महाप्रभु ने रामचंद्र के रूप, रामचंद्र स्वयं, रामचंद्र दूरबादल स्वयं है, लेफ्ट साइड में सीता जी, दक्षिण में लक्ष्मण जी और हनुमान के साथ उन्होंने दर्शन दिए। तब उन्होंने खुश हो गया, बोले यही मेरा रामचंद्र है। तीसरे प्रकार नित्यानंद प्रभु को बताया, नित्यानंद जीव गोस्वामी को बताया इसे। इसके बाद तो वहां पे वासुदेव दत्त का भी जो भजन कुटीर और उनका घर वहां पे था, और वृंदावन दास ठाकुर की जो नारायणी है उनकी माता जी, उनका भी जन्म मामगासी में हुआ है। उनका जो उपासना विग्रह है वो विग्रह अभी भी है, एक गौरी मठ, उनको गौरी मठ देखभाल करते हैं, अभी गौरी मठ के अंडर में है। इसी प्रकार मामगासी में वृंदावन दास ठाकुर का जन्म हुआ, और वासुदेव दत्त और सारंग मुरारी। तो सारंग मुरारी महाप्रभु का एकांत एक पार्षद है, जिनकी ब्रजलीला में नंदमुखी गोपी है, वो चैतन्य महाप्रभु की लीला में सारंग नाम से ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ और मामगासी में रहते थे, तो बहुत विरक्ति व्यक्ति थे। तब जो गंगा तट था बहुत वहां पे जो मामगासी है बहुत जंगल था, उस जंगल में उन्होंने एकांत भजन किया। एकांत बहुत निष्ठा के साथ बहुत तरह के भजन किए, इसलिए भजन बिना साधन बिना साध्य वस्तु केहो नहीं पाए। इसलिए इस वस्तु को कृष्ण प्रेम कृष्ण पाने के लिए साधन करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। ऐसे खाने से और सोने से केवल माला केवल फिर दिया आराम से रहा, कोई चिंता नहीं, 24 घंटा चिंता करना पड़ेगा इसके बारे में। महाप्रभु जिसको जिसके भी आदेश दे बोला निरंतर निरंतर लहो तुम्हें कृष्ण कृष्ण नाम, क्योंकि कली का कलमश इतना ज्यादा है, जब भी छोड़ देंगे तो दूसरा बुद्धि दूसरा मन दूसरा विचार दूसरा बात मन में घुस जाएगा। इसलिए ने बहुत करके साधन अकेला अकेला किया, तो उन्हें भजन के प्रभाव से बहुत सिद्ध महात्मा हो गया। और उनका मन में यही विचार था सारंग जी की कि मैं दीक्षा नहीं दूंगा, दीक्षा देने से मेरे को भजन में बाधा होगा। दीक्षा देने से गुरु महाराज मेरा ये हो गया, मेरा नकली नहीं लग रहा, मेरी बेटी शादी नहीं हो रहा है, क्या है? कोई सारे सांसारिक बात हो, भजन की बात नहीं करते हैं, अपने सारे समस्या को जगह बताते हैं, कैसे मैं भजन करूं, मेरा मन विषय में है इसके छुटाई है, मेरे से मन अपने कृष्ण में लगा, ये बात नहीं करेंगे, अपने समस्या की बात। इसलिए ये पहले वो तो तत्वदर्शी थे, तो उन्होंने विचार किया मैं ज्यादा शिष्य बनाऊंगा तो ये मेरे को ऐसे डिस्टर्ब करते रहेगा, प्रतिष्ठा होगा, इसलिए उन्होंने विचार किया कि मैं प्रचार शिष्य नहीं बनाऊंगा। और महाप्रभु चाहते थे उनको जो पार्षद है उन लोग प्रचार करें, तो जब भी महाप्रभु उनसे मिलते थे बोला प्रचार करो, फिर भी भजन करते थे। उनका मन था, उनका संकल्प था बिल्कुल। तो ऐसे है प्रचार के कार्य या गुरु की आदेश या भगवान ठाकुर जी की जो आज्ञा इसको पालन करना है, नहीं आपने सब कुछ करना, अपना मन के विचार से एक संकल्प बना लो उसके हमको पालन करना है। यदि कोई बड़े बड़े संकल्प हमें कर लिए लेकिन गुरु जी का आदेश है, यह जैसे साक्षात महाप्रभु हम उनका आदेश दे रहे, तो इसी पर छोटे छोटे संकल्प को तोड़ देना चाहिए। तो बार बार महाप्रभु जब भी मिलते थे सारंग से तब उनको बोलते थे आप प्रचार करो। तब जिस समय महाप्रभु जी ने देवानंद पंडित की जो अपराध था उसके क्षमा किया, श्रीवास के प्रति जो देवानंद पंडित अपराध किया था, एक दिन भागवत कक्षा में उनका प्रेम आ गया था, उनके शिष्य लोग देवानंद बहुत बड़ा अच्छा भागवत वक्ता थे, तो उनको निकाल दिया श्रीवास, जो शिष्य लोग थे वो पढ़ाते थे उन लोग डिस्चार्ज हुआ श्रीवास की रोने से, उनको निकाल दिया था। तो महाभागवत के प्रति ऐसे करने से अपराध हो जाते हैं, तो उनका अपराध हो गया था। तो महाप्रभु कीर्तन करते समय एक बार उनके सामने से जा रहा था, बहुत क्रोधित हो गया था देवानंदो कुपति। तो बाद में एक दिन बक्रेश्वर जी के कीर्तन कर रहे थे, उसी में थोड़ा सेवा किया, तो महाप्रभु इसमें खुश हो गया। तो बाद में महाप्रभु जब सन्यास लेके कुलिया में माधवदास के घर में रुके थे, उसी समय उनका कृपा कर दिया था। कृपा करके महाप्रभु जब जा रहे थे उसी समय सारंग मुरारी से मिला था, बहुत महाप्रभु जोर लगाया तब कि आपको प्रचार करना ही है, ऐसे बैठे बैठे भजन करने से नहीं होगा। हमेशा महाप्रभु बताए ना, जाड़े देखो ताड़े कहो कृष्ण उपदेश, इसके पहले कहता है निरंतर लहो तुम्हें कृष्ण कृष्ण नाम, पहले बताया निरंतर कृष्ण कृष्ण नाम लो और उसके बाद जाड़े देखो ताड़े कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हुआ ताड़ो देव। तो महाप्रभु आपने को आचरण करने के लिए बोला और प्रचार करने के लिए भी बोला। तब उन्होंने महापुरुष से बता दिया ठीक है, मैं जिसको भी देखूंगा काल सुबह उसके मैं दीक्षा दे दूंगा। तो उसके बाद उन्होंने सुबह सुबह गंगा के तट पे रहते थे कुटिया बना के। अभी गंगा दूर है लेकिन उसी समय 500 साल पहले गंगा तट पर मामगाछी जो है उनके पास में थे। तो सुबह सुबह नहाने के लिए गया, जाने के बाद उनको एक मुर्दा आके लगा उनके शरीर नीचे से। तो हटाते हैं फिर चरण में आ जाते हैं। तो उठाया, उठा के देखा एक मुर्दा है। तो उन्होंने बता दिया कि जिसको मैं दर्शन होगा उसको मैं काल दीक्षा दूंगा। तो ये तो मुर्दा के अस्त मुर्दा के सब मिला मेरे को, अभी क्या करना है। तो उन्होंने महाप्रभु के स्मरण करके ये करके कान में मंत्र फूंक दिया मुर्दा को। मंत्र फूंकते ही उन्होंने उठ के बैठ गया, जय षडंग मुरारी के। तो उठे महा षडंग जी ने पूछा आपका नाम क्या है, तो उनका घर से नाम ही मुरारी था। तो दीक्षा में नाम चेंज कर देते, ऐसे नहीं कि जिसके नाम भगवान के साथ है उनके नाम भी चेंज करा किया जाए। क्योंकि जैसे विदेशी में प्रभुपाद जी विदेशी लोगों को नाम बहुत दूसरे दूसरे नाम था, अभी का जो लगा है इसका नाम बहुत दूसरे दूसरे नाम होता है। पहले का लोगों का नाम ठाकुर जी का नाम से ही होता था। जैसे नरोत्तम है उनके बचपन घर के नाम है, गोपाल कृष्ण महाराज है इनका नाम घर के नाम है, प्रभुपाद ही नाम दे दिया। रामकांत प्रभु है उनका नाम यही है पहले से घर से नाम। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि केवल नाम चेंज करना है। ठाकुर जी का नाम कृष्ण है उनके बलराम करने का कोई जरूरत नहीं है, कृष्ण कृष्ण ही रहेगा, कृष्ण दास लगा दो। तो उनका नाम मुरारी था, उनके दीक्षा दे दिए, उनका नाम घर के नाम ही वही नाम रहा। तब बहुत उनको शिक्षा दिए और बहुत एकांत भक्त हुए और बहुत ही घनिष्ठता दोनों था। इसलिए उनका जो नाम है षडंग मुरारी, गुरु के साथ उनका नाम है षडंग मुरारी। बाद में पता चला घर के घर वाले को और पता किया कि उनके सर्पघात से उनका मृत्यु हो गया था। तो जो सर्प काटने से जो मृत्यु होते हैं, बंगाल में नियम है कि केला के यज्ञ बना के उसमें बहा देते हैं, जलाते नहीं है। तो गंगा में बहते बहते आ गए थे, उनके घर घर वाले को पता लगा कि वो बेटा वो जिंदा हो गया। तो आके घर वाले भी उनसे आके पूछे और ले जाने के लिए बताया, और घर के एक ही लौता बेटा था लेकिन वो और कहीं के जाए, मरा हुआ को जिसको जिंदा कर दिया, पुनर्जीवन मिल गया उनको, वो तो मरा ही हुआ था ना, मर ही गया था। तो इसलिए बहुत आग्रह करने के बाद भी, घर से बहुत आग्रह किया फिर भी उन्होंने और गया नहीं, उनके साथ रहे और प्रसिद्ध हुए। तो षडंग ठाकुर चला जाने के बाद उन्हें जो श्रीपाट है वही उन्होंने देखभाल किया। षडंग ठाकुर जी के जो थे उनके विग्रह था श्री गोपीनाथ जी विग्रह अभी तक वहां पे है, विराजमान है। इसी प्रकार षडंग ठाकुर जी जब वृद्ध हो गए, महापुरुष चले गए, तो उनका भी जाने का इच्छा हुआ। तो आज की जो तिथि है अग्रहण महीने की कृष्ण पक्ष की जो त्रादशी है, ये त्रादशी तिथि को उन्होंने अपनी नित्य लीला में प्रवेश किया। तो भक्त लोग इतना महान होते को होते हुए भी अपने को धन्यता समझते हैं। महाप्रभु और जो पद्मन मिश्र का वार्ता हो रहा था, इसी समय रामानंद के पास उन्होंने भेजा था कथा सुनने के लिए। तो बाद में जब कथा सुना तो बहुत आनंदित हो गया। तो बोला ये जो रामानंद है मनुष्य नहीं है, ये तो साक्षात कृष्ण भक्ति है। तो इसके बाद उन्होंने बताया कि ये मैं नहीं बताया इस कथा को, ये तो चैतन्य महाप्रभु ने मेरे मुंह से बताते हैं। तो महाप्रभु इस प्रसंग में बताते हैं, महानुभाव एक सरल स्वभाव है, आपनार गुण नहीं आपने कहाय। तो एक महानुभाव की स्वभाव और चरित्र ऐसे है कि अपने गुण को अपने मुखों से कभी बखान नहीं करते हैं। आजकल क्या है, आजकल बोर्ड लगता है 1008 श्री 108 श्री, कितना सब एडवर्टाइज में सब कुछ होते हैं, लेकिन पहले लोग ऐसे थे नहीं। तो ये हम चीज से नापना है, ये मीटर है। महानुभाव स्वभाव सरल स्वभाव यही है, अपनार गुण नहीं अपने का है, ये मीटर, ये मापने का नापने का मीटर है। जो महानुभाव है वो अपने गुण को अपने को भी बताते नहीं है कि मैं इतना महान हूं, मैं इसको जानता हूं, मैं सिद्ध पुरुष हूं। तो महापुरुष के भक्त लोग ऐसे ही थे, ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे 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 जने जने। तो एक एक भक्त महापुरुष के एक एक भक्त ब्रह्मांड को तारण करने के लिए शक्ति रखते थे, फिर भी अपने को मानते थे क्या एकदम तीर्णों से हीन मानते थे, कुछ नहीं जानते हैं। तो ये अच्छे वैष्णव की जो वैष्णव है उनकी क्वालिटी ये है। तो सारंग मुरारी हमेशा वैसे सोचते थे कि मैं तो दीक्षा देने के कहा योग्य हूं, मैं तो इसी प्रकार एक सच्चे वैष्णव इनके लक्षण है, इनके गुण है। वो इतना महान पहुंचा होते हुए भी आपने को इतना विनम्र समझते थे और हमारा दीक्षा देने से ऐसे हो जाएगा, इसलिए उन्होंने दीक्षा नहीं। तो महापुरुष का आदेश लिए, उनको उन्होंने प्रचार किया और स्थिति में उन्होंने चले गए अपने धाम में। बाद में उस महंत गद्दी में मुरारी जी थे, वो भी बहुत बड़ा प्रसिद्ध भक्त हुए। आरोप एक सिद्ध बकुल है जो तप के समय से अभी तक है और गोपीनाथ जी का सेवा तब से वहीं पे चल रहे हैं। तो एक बार कोई गांव वाले, जब उन लोग परंपरा चल नष्ट हो गया था, तो गांव में कोई समस्या भी आ गया था कि कोई सेवा करे, गांव में बहुत बीमार हो रहा था। तो मन में एक अफवाह फैल गया कि ये ठाकुर जी का सेवा ठीक से नहीं, अपराध हो गया इसलिए हो रहा है। तो ठाकुर जी को गंगा बहा देने के लिए सोच रहे थे गोपीनाथ जी को। और वासुदेव दत्त के भी जो ठाकुर जी है वो भी वहां पे है। इसी समय भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ना उनके एक शिष्य कोई उन्होंने जा रहे थे, वहां जाके पहुंचा तो उन लोगों को सेवा के दायित्व दिए। तो आपसे अभी तक वो बाबा जी नहीं है, एक बाबा जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के शिष्य है, उन्होंने उस जो मंदिर है राधा गोपीनाथ जी की सेवा देखभाल कर रहे थे। और अभी वही ठाकुर जी है, वो दिव्य स्थान है। और वासुदेव दत्त जो है उनका भी वही पे उनका भेटा है, कुछ भी नहीं है, केवल स्थान मात्र है। तो जो मैं बता रहा था ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जाने जाने, यही वासुदेव दत्त जो बहुत ही विनम्र थे। और जब महापुरुष एक बार कुछ खुश होकर मांगने के लिए बोला कि आपने कुछ मांगो, बर मांगो मेरे से आशीर्वाद, कुछ चाहो मैं आपको दे दूंगा। तो उन्होंने क्या मांगा कि प्रभु ब्रह्मांड की जितना जीव है, और बताते आप इसके कर्ण में समर्थ है, जितना जीव है सारे जीवों को आप उद्धार कर दो, बिना पाप भोगे हुए सबको उद्धार कर दो। और ब्रह्मांड में कितना जीव है देखिए, थोड़े थोड़े ये में कितना करोड़ जीव, कोई पानी में कुछ छोटे छोटे पानी में आप देखेंगे करोड़ों करोड़ जीव है। ब्रह्मांड के सारे जीवों का कितना उदार हृदय है, उद्धार मांगा। और क्या बोला, ऐसे ने फ्री में नहीं बोला, वो सारे जीवों का पाप प्रभु मुझे दे दो, सारे जीवों का पाप मुझे दे दो, अनंत 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 काल तक मैं नरक में सारे जीवों का पाप भोगते रहूंगा। देखिए दया की सीमा को पार कर गया। भगवान तो दयालु है ही है, उनका भी बुद्धि चकरा जाता है कभी कभी, उन्होंने तो क्या ही वासुदेव ने क्या मांग लिया। तो उसके बाद बोला मैं अनंत काल तक ये सारे जीव का पाप भोग करूंगा और सबको उद्धार कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए और मेरे को नर्क भेज दीजिए। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर भी, भक्त तो क्या भगवान से कुछ भी डिमांड नहीं करते हैं कि मैं ऐसा आपका भजन किया इसके लिए मेरे एक कर दो, नहीं, फ्री में नहीं, उसके फल मेरे को भोगाओ। यही भक्त है, जो सच्चा भक्त हरित की भक्ति है, ऐसे है। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाई जन्म में जन्म, ना ये नहीं है, ये नहीं, वो दूसरे है। जो मेरा जो भी दुष्कर्म जो भी वो मेरे को वही कर्म हम भोग करो, जो मेरा कर्म फल है आप नष्ट नहीं कीजिए, हम भोग कीजिए, भोग करूंगा। लेकिन एक प्रार्थना है कि आपके चरण कमल में मेरा मति रहे। तो भक्त जो होते हैं वो अपने कर्म को नष्ट करने के लिए, मुक्त करने के लिए वो नहीं बोलते, लेकिन भगवान तो कर देते हैं, लेकिन भक्त बोलते नहीं कभी। इसलिए ये अपहित, इसलिए भगवान के प्रिय होता है। और इसलिए जो शुद्ध भक्ति अहैतिक भक्ति है, ये सुदुर्लभा, भक्ति रसम से बताया है कि ये सुदुर्लभा है। तो महाप्रभु बहुत ये करके बताया, तो उन्होंने महाप्रभु ने बताया तुम्हें जार हितवंश सही तो वैष्णव वैष्णव पाप कृष्ण दूर करे सब। तो एक शुद्ध भक्त तो जिसका भी हित वांछा करते हैं वो वैष्णव हो जाते हैं, इसको मुक्त कर दो, सबको मुक्त कर दो, ऐसे बोल देंगे शुद्ध भक्त तो मुक्त हो जाएगा, वो वैष्णव हो जाएगा। और वैष्णव का जो पाप है कृष्ण अपने आप दूर कर देते हैं, दूर कर देते हैं, वो शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार वासुदेव दत्त की भी जन्मस्थान हुई है, और वृंदावन दास वहीं पे रहे, नारायणी और वासुदेव दत्त के घर में भी सेवा करते थे अग्नकरानी की। इसमें उनके पिताजी वैकुंठ, जब वृंदावन दास ठाकुर गर्भ में थे उनके पिताजी देहांत हो गया था। तो बहुत अच्छे स्थान है, आप लोग जब जो जो परिक्रमा किए देखे होंगे। मामगाछी अभी नाम है, और ये सारंग मुरारे की गोपीनाथ जी है, वासुदेव दत्त की जो जन्म स्थान है वहां पे कोई मंदिर आदि कुछ नहीं है, एक जंगल सा बना हुआ है। और वृंदावन दास ठाकुर की जो जन्म स्थान है वो भी गौरी मठ देखभाल कर रहा है, मंदिर आदि बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है। और इसमें कोई बड़े कोई लीला भी नहीं था, जैसे तन खिसके हो गया। इतना बोल के अपने वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्ण।